पहुंचते ही कदम जहां पे मिल जाते प्रभु वहां पे। रखते ही कदम जहां पे मिल जाते प्रभु वहां पे, शिव का हो जहां पे मिलन, वो है प्यारा प्यारा मधुबन, वो है प्यारा प्यारा मधुबन।
रखते ही कदम जहां पे मिल जाते प्रभु वहां पे, शिव का हो जहां पे मिले, वो है प्यारा प्यारा मधुबन, वो है प्यारा प्यारा
बनकर
देते प्यार की दृष्टि सबको,
प्रेम का सागर भरकर,
ओ हो हो,
जहां रहते हैं शिव बाबा,
ब्रह्मा साथी बनकर
देते प्यार की दृष्टि सबको,
प्रेम का सागर भरकर, दृष्टि से जहां पर हो कल्याण,
वो है प्यारा प्यारा।
ओम शांति। किसी अनजान गांव में एक व्यक्ति सड़क से गुजर रहा था और उसने देखा कि किसी घर के सामने एक दूसरा व्यक्ति जो उस घर का मालिक था, एक घोड़े को जबरदस्ती घर के अंदर घसीट रहा है। उसे आश्चर्य होता है जो व्यक्ति वहां से गुजर रहा है उसे। वो घोड़ा अंदर जाना नहीं चाहता, पर वो घर का मालिक उसे घर के अंदर घसीट रहा है। और वो मालिक उस व्यक्ति से कहता है, मेरी थोड़ी सहायता कर दो, इस घोड़े को मुझे घर के अंदर ले जाना है। और वो अनजान व्यक्ति सोचता है, मुझे मदद करनी चाहिए, और वो मदद करता है और दोनों मिलके उस घोड़े को घर के अंदर ले जाते हैं। और जैसे ही घोड़ा अंदर जाता है, वो घर का मालिक उस घोड़े को पहली मंजिल पर सीढ़ियों से घसीटते हुए ले जाता है और कहता है, इतनी मदद कर दी, थोड़ी और मदद कर दो, फर्स्ट फ्लोर तक घोड़े को पहुंचा दो। बुराहगीर सोचता है, मुझे क्या लेना देना है, मैं क्यों पूछूं, क्यों, मदद मांग रहा है, मदद कर देता हूं। और वो दोनों मिलकर घोड़े को घसीटते हुए फर्स्ट फ्लोर पर ले आते हैं। और फिर घर का मालिक उस घोड़े को वहां का जो बाथरूम है वहां घसीट कर ले जाता है और कहता है, अब थोड़ी मदद और ही कर दो। उस राहगीर को आश्चर्य तो जरूर होता है, पर सोचता है, मुझे क्या लेना देना। और दोनों मिलकर घोड़े को बाथरूम में ले जाते हैं। बाथरूम के टब में वो घोड़ा खड़ा करता है और फिर अपने जेब से एक पिस्तौल निकालता है और घोड़े को शूट कर देता है। अब उस राहगीर से रहा नहीं जाता है, वो पूछता है, ये क्या कर दिया आपने, घोड़े को क्यों मार दिया। वो व्यक्ति कहता है, घर का मालिक, कि मेरा एक मित्र है और उसे एक बीमारी है, और बीमारी है आई नो की बीमारी, उसे कुछ भी कहो तो वो कहता है, मैं जानता हूं, उसे कुछ भी बताओ वो कहता है, मुझे पहले ही पता है, और आज वो खाने के लिए आने वाला है मेरे पास। वो राहगीर पूछता है, परंतु उसके यहाँ आने से और घोड़े को मारने से क्या संबंध? वो घर का मालिक कहता है, मैं कई सालों से उसके साथ हूँ और वो मुझे हमेशा एक ही बात कहता है, उसे कुछ भी बताओ, कुछ भी सुनाओ, वो कहता है मैं पहले से ही जानता हूँ। आज जब वो मेरे यहाँ खाने के लिए आएगा और जब खाना होने के बाद बाथरूम में जाएगा और हाथ धोएगा और ये घोड़ा देखेगा तो आश्चर्यचकित हो जाएगा और आके कहेगा कि ये मैं नहीं जानता, ये कैसे हो गया। बस इसी बदला लेने के लिए मैंने इस घोड़े को ऊपर लाकर मार दिया। मनुष्य का पतन इससे नहीं हुआ कि उसमें बहुत विकार घुस गए, परंतु इस सूक्ष्म पतन का एक और कारण भी है, और वो कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ नॉलेज इज नॉट इग्नोरेंस बट इल्यूजन ऑफ इग्नोरेंस, इल्यूजन ऑफ नॉलेज। मैं जानता हूँ यह ब्रह्म, मुझे ये भी पता है, मुझे वो भी पता है, मुझे ये भी पता है, मुझे ऐसा भी पता है, मुझे सब कुछ पता है। क्या पता है? इस पता है और पता है नहीं हमें वहां पहुंचा दिया है जहां हम अब है। शेक्सपियर का एक पात्र हेमलेट अपने जनरल से कहता है, देयर आर मेनी थिंग्स इन हेवन एंड हेल होरेशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलॉसफी। जितना तुम सोचते हो, जितनी तुम्हारी समझ है, उससे परे भी संसार में बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते, जो तुम्हें अभी तक कुछ भी पता नहीं है। जब हमें अपने अज्ञान का पता चलता है तब जीवन की वास्तव में यात्रा चालू होती है। कहते हैं मैन हैज जस्ट स्क्रैच द सरफेस ऑफ साइंस। साइंस को अभी हमने कहाँ समझा है, जस्ट सरफेस को स्क्रैच किया है। मेडिसिन की हर किताब के फ्रंट पेज पे लिखा रहता है, मेडिसिन इज एन एवर चेंजिंग साइंस। 10 ईयर्स बैक जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड था वो आज ड्रग ऑफ चॉइस है। मेडिसिन इज एन एवर चेंजिंग साइंस। यदि मनुष्य ने साइंस को केवल एक खरोच लगाई है तो साइंस हैज जस्ट स्क्रैच द सरफेस ऑफ रिलीजन, और रिलीजन हैज जस्ट स्क्रैच द सरफेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अभी तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ जो जानना बाकी है, जो समझना बाकी है, जो चेतना में धारण करना बाकी है। और आप सब लोग जो 3 दिन के लिए यहाँ आए हो, वो इसलिए नहीं कि बहुत कुछ समझना है मेडिसिन के बारे में, या बहुत कुछ जानना है साइंस के विषय में। यहाँ जो आए हैं वो उस विषय में जानना है जिसे साइंस अब तक मानता नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा मान रहा है और थोड़ा थोड़ा जान रहा है। तो यात्रा अज्ञात की है, इन सर्च ऑफ द मिराकुलस, इन सर्च ऑफ द अननोन। अंग्रेजी में एक किताब है इन सर्च ऑफ द मिराकुलस, पीडी ऑफ स्पेंस की, उसमें प्रस्तावना में वो लिखता है, ये किताब मैं अपने गुरु को समर्पित करता हूँ, डिवोटेड टू जॉर्ज गुरजीएफ हु ब्रोक माय स्लीप, जिसने मेरी नींद को तोड़ा। अर्थात मैं सो रहा था, मैं अपने घमंड में, अपने अज्ञान में, अपने अहंकार में, अपने ज्ञान में सो रहा था, और कोई आया और जिसने मेरी नींद को तोड़ा। तो विज्ञान के विषय में हम बहुत कुछ जानते हैं, समझते हैं, परंतु जैसे कहा, देर आर मेनी थिंग्स इन हेवन एंड हेल, अभी बहुत सी बातें ऐसी है जो जानना बाकी है, जो समझना बाकी है, जो अनुभव करना बाकी है। और ये 3 दिन आप सब यहाँ आए केवल एक ही कार्य के लिए, और वो है अनुभव, एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस कोई बहुत घंटों का नहीं होता है, 1 सेकंड का एक्सपीरियंस काफी है जीवन को परिवर्तन करने के लिए। संसार आवाज की दुनिया है, 1 सेकंड का साइलेंस काफी है। आवाज के शोरगुल से बाहर आने के लिए और भीतर जाने के लिए। तो जिस भूमि पर आप आए हैं ये साधारण भूमि नहीं है, जिस भूमि पर आप बैठे हैं यहाँ एक अज्ञात सा, सूक्ष्म सा, इनविजिबल सा मैग्नेटिक फील्ड है। मधुबन शब्द सबने सुना है, इसके 3 अर्थ हो सकते हैं। सबसे पहला वो मधुबन जो शास्त्रों में दिखाया गया है, जहाँ गोपियाँ कृष्ण के साथ रास कर रही है। दूसरा मधुबन जो ये कॉम्प्लेक्स है, इस सभी कॉम्प्लेक्स को मिलकर मधुबन कहा जाता है। और वास्तव में जो रियल मधुबन है वो ऊपर है, आबू पर्वत में। कईयों ने देखा होगा, कई देखेंगे। ये जितने सारे कॉम्प्लेक्स है, सम टोटल ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, इन सभी को मधुबन कहा जाता है। और तीसरा मधुबन अर्थात मधु और वन, मधु अर्थात स्वीटनेस, वन अर्थात डिटैचमेंट, वैराग्य। जिस मन में स्वीटनेस भी है और साथ साथ डिटैचमेंट भी है, दोनों का एक अप्रतिम कॉम्बिनेशन जहाँ है, ऐसी चेतना भी मधुबन ही है। तो ऐसे महान भूमि पर, ऐसे महान तीर्थ पर आप सब आए, आप सब बैठे हैं। और एक प्रश्न सभी के मन में रहता है कि यहाँ मुझे किसने लाया, वो कौन है जो मुझे यहाँ खींच कर लाया? क्या कोई व्यक्ति है, क्या कोई बहन है, क्या कोई भाई है? कौन यहाँ लेकर आया, कौन यहाँ खींच कर लाया, या कोई अदृश्य सी शक्ति है? एक उत्तर ये हो सकता है, यहाँ वही आ सकता है जिसके पास जन जन के पुण्य का कोटा है। वो पुण्य ही आत्मा को ढकेल 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 कर यहाँ तक पहुँचाता है। फिर कह रहे हैं कि ये साधारण भूमि नहीं है, ये वो भूमि है जहाँ वंस अपॉन अ टाइम एक क्रांति घटी थी। वंस अपॉन अ टाइम जहाँ पर एक परिवर्तन आया था, एक ऐसा परिवर्तन जो सारे संसार को परिवर्तन करने वाला था, परिवर्तित करने वाला था। एक ऐसी आंधी, एक ऐसा तूफान, जिन्होंने माउंट आबू देखा होगा या जो कल देखेंगे तो पता चलेगा कि ये क्या है। ब्रह्मा कुमारीज एक संस्था भी है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, पर हम सब लोग उसे प्यार से यज्ञ कहते हैं। और 5550 5th में 1950 सिंध हैदराबाद में चालू हुआ ये यज्ञ माउंट आबू पहुंचा। हम्बल बिगिनिंग्स, शुरुआत जब आप माउंट आबू पहुंचेंगे और टोलना का क्रॉस करेंगे, वहां जाते जाते एक होटल है सनराइज पैलेस, पहले उसे ब्रिज कोटी कहा जाता था, वहां पर सभी यज्ञवत्स आए और वहां 4 साल रहे। बाद में कोटा हाउस, ढोलपुर हाउस और उसके बाद में पोखरान हाउस, जिसे वर्तमान में पांडव भवन कहा जाता है। इंग्लिश में कहावत या पोयम है बच्चों की, हम्प्टी डम्प्टी की। Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. Not all the king's horses and not all the king's men could make Humpty sit again. ये संसार का ऐसा फॉल हुआ है, ऐसा फॉल हुआ है, ऐसा पतन हुआ है कि नॉट ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड नॉट ऑल द किंग्स मैन. जो गिरावट आई है संसार में, धर्म स्थापक आके गए, रिलीजियस फाउंडर्स, तीर्थंकर आके गए, बुद्ध आके गए, महान आत्माएं आके गए, संत या आके गए, योगी आके गए, ईश्वर पुत्र आके गए, क्या क्या, कितने महान आत्माएं आके गए, परंतु संसार की हालत गिरती ही गई. और एक समय ऐसा आया कि लास्ट में स्वयं भगवान धरती पर आया. यदा यदा ही धर्मस्य, जब ऐसी ग्लानी हुई, व्हेन रिलीजन गॉट द अपर हैंड एंड धर्मा डिटियोरेटेड, तब भगवान आया. और ये भूमि वही परमात्मा अवतरण भूमि है. तो चाहे पांडव भवन या ज्ञान सरोवर या हॉस्पिटल या म्यूजियम या शांतिवन या मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स, ये सारी भूमि, इन सब को मिलाकर हम मधुबन कहते हैं, परमात्मा अवतरण भूमि. और सभी बहुत भाग्यवान हैं जो इस भूमि तक आकर पहुंचे हैं. और यहाँ केवल लेक्चर सुनने नहीं आए, यहाँ केवल कुछ क्लासेस अटेंड करने नहीं आए, यहाँ केवल कुछ एक्टिविटी करने नहीं आए हैं. यहाँ पहुंचना अर्थात एक डिवाइन कॉल आया है. यहाँ वही पहुंच सकता है जिसे वो डिवाइन कॉल आता है, उसके सिवा यहाँ कोई आ ही नहीं सकता. तो आप सभी बहुत बहुत भाग्यशाली है जो यहाँ पहुंचे. कॉन्फ्रेंस तो एक निमित्त मात्र है. ये स्थान आत्मा और परमात्मा के मिलन का स्थान है. तो वंस अपॉन अ टाइम यहाँ परमात्मा का अवतरण हुआ. वंस अपॉन अ टाइम यहाँ पर जो फर्स्ट मैन है आदिदेव, उसके साथ वो सभी लोग जिन्होंने उसे जाना, अब जानन्ति माम मुड़ा, वो साधारण तन में आता है और मूर्ख उसका उपहास उड़ाते हैं. पर कुछ आत्माएं जिन्होंने उन्हें पहचाना, आपने देखा होगा यहाँ वहाँ तस्वीरें लगी हुई है दादियों की, वो जब छोटी छोटी कन्याएं थी, कोई 10 साल कोई 12 साल, वो सब 1936 में सिंध हैदराबाद में आ गए और फिर यहाँ शिफ्ट हुए 50s में. वो सब यहाँ आए, उन सब ने यहाँ पर तपस्या की. यहाँ पर उनकी वजह से कितनी दूसरी आत्माएं आई, उनकी वजह से इस स्थान पर कितने लोगों ने जन्म लिया. यहाँ के प्रकंपनों में एक अजीब सा आकर्षण है जो आप सब ने पिछले 2 दिनों से अनुभव किया होगा. यहाँ कुछ तो है, जैसे ही इस भूमि पर आते हैं कोई है जो शक्ति, जो जिसने स्ट्रेस को खींच लिया, कोई सक्शन मशीन है जैसे इनविजिबल, कि यहाँ आते ही कुछ अनूप अजीब सा अनुभव होता है. ऊपर ज्ञान सरोवर है जो आप देखोगे, वहां पर एक बार रिलीजन की कॉन्फ्रेंस हुई थी, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, बहुत बड़े बड़े महामंडलेश्वर आए थे और उसमें से एक व्यक्ति जो बहुत बड़े मंडलेश्वर थे, उन्होंने कहा था ये जो स्थान है ऊपर जो ज्ञान सरोवर है उसके लिए, कि यहाँ के वायुमंडल में ही ऐसे शांति के प्रकंपन है जैसे प्रभु प्रेम की तरंगे यहाँ पर है. ऐसा वायुमंडल तो हमारे आश्रम में भी नहीं है. और यहाँ सब कुछ जो चल रहा है इतना शांति से चल रहा है, चुपचाप, पिन ड्रॉप साइलेंस. सुबह सभी उठ रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट अपने आप काम कर रहे हैं. ये कर कौन रहा है, कैसे कर रहा है, ये कोई मनुष्य कर ही नहीं रहा है. दिस इज द फोर्स डिवाइन विच इज वर्किंग. तो यहां आना अर्थात केवल कुछ नोट्स लिखने के लिए नहीं, कुछ सुनने के लिए नहीं, यहाँ का कोई विशिष्ट भोजन खाने के लिए नहीं, कोई एक्टिविटी करने के लिए, ना केवल केवल एक्सरसाइज करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए नहीं। ये सब तो चीज़ें हैं, ये अपने आप हो रही है, पर यहाँ आने का मुख्य लक्ष्य है अनुभव। ये कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस ना होकर टर्निंग पॉइंट हो जाए जीवन का। ऐसी लगभग 60 कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी है भारत में, 60 से भी ज्यादा एमबीएम की। 30 वर्ष तो इस मेडिकल विंग को हो गए हैं। 200 से अधिक फेयर कैंप्स ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। ये कौन कर रहा है, कौन सी शक्तियां हैं? ऊपर से तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, पर इसके पीछे एक ही फोर्स है, और वो फोर्स है प्योर इंटेंशन, अत्यंत शुद्ध भावना। बिना प्योर इंटेंशन के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। और जब भी कोई कार्य देखो परवान चढ़ रहा है, सफलता को पा रहा है, जरूर उसके पीछे बहुत बड़ा त्याग, बहुत बड़ी तपस्या छिपी हुई है। तो वंस अपॉन अ टाइम भगवान यहाँ आए, वंस अपॉन अ टाइम ब्रह्मा यहाँ आया, वंस अपॉन अ टाइम वो सारे यज्ञ वत्स आए, वंस अपॉन अ टाइम उन्होंने यहीं पर सेवाओं की शुरुआत की, वंस अपॉन अ टाइम यहाँ से ही सेवाएं परमात्मा प्रकाश सारे विश्व में फैला और एक एक करके आत्माओं को आकर्षित किया। और यहाँ जो भी आता है, कितनी भी निगेटिविटी के साथ आता है, ये जैसे एक ओशन है पॉजिटिविटी का, जो भी इसमें छलांग लगाता है, ही गोज बैक बट पॉजिटिव, होपफुल, पावरफुल, फुल ऑफ एनर्जी। यहाँ की दीवारों में ही प्रभु प्रेम की तरंगे, जहां जाओ कुछ तो है यहाँ। और आप सबको एक काम और दे रहे हैं, आज का दिन आपके पास है, शायद कल का भी आधा दिन, एक काम करना है इस कैंपस में, पूरे कैंपस में, चाहे मनमोहिनी या फिर शांतिवन, यहां पर आपने बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस सुनी, बहुत पावरफुल क्लासेस सुनी, और जिनको सुन रहे थे मन ही मन सोच रहे होंगे कि ये कौन से लोग हैं, अजीब से लोग हैं, कैसे ये बोलते हैं, एक से बढ़कर एक, जैसे कोई फैक्ट्री है यहाँ पर लीडर्स की और स्पीकर्स की। संसार में एक मोटिवेशनल स्पीकर होता है, विश्व को हिला देता है। यहाँ तो जिसको भी देखो अजीब है, वाणी में ही पावर है, एक स्पिरिचुअल आवरा है, एक मैग्नेटिज्म है, एक डिवाइन करिश्मा क्या है। यहाँ तो बहुतों को सुना, पर और एक काम करना है, किचन में जाओ, डाइनिंग में जाओ, यहाँ जितने कैंपस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं, कहीं कोई माताएं हैं वो रोटियां बेल रही है, कुछ भाई है सब्जियां काट रहे हैं, उन्हें तो शायद पता भी नहीं कि कॉन्फ्रेंस चालू है, वो पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें बोलना नहीं आता, उन्होंने कभी भाषण नहीं दिया, कभी पब्लिक के सामने वो गए नहीं है, पर उनके पास जाओ। कोई भाई है प्रदर्शनी समझा रहा है, कोई भाई है झाड़ू लगा रहा है, पोछा कर रहा है, किचन में है, डाइनिंग में है, कहीं पर भी, जितने सारे डिपार्टमेंट्स, सोलर में चले जाओ, गार्डन में चले जाओ, और उस भाई से, उस व्यक्ति से, उस माता से कुछ प्रश्न पूछो। यहां पर शायद आपको बताया गया होगा ऐसे करो, वैसे करो, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, और बहुत सारी बातें ऐसी भी हो सकती है कि आपके बुद्धि ने या इंटेलेक्ट ने रिजेक्ट कर दी। एंड डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग विच इज सेड ओवर हियर, अगेन एंड अगेन आई विल टेल, डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग बिकॉज इट इज रिटन इन बुक्स, डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग बिकॉज इट हैज बीन सेड बाय सर्टन स्पीकर, डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग बिकॉज इट हैज बीन हैलोड बाय ट्रेडिशंस, डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग बिकॉज इट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर लॉन्ग टाइम, डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग बिकॉज समबडी इज स्पीकिंग आउट ऑफ हिज ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, फाइंड द ट्रूथ योरसेल्फ। और इसके लिए ये काम करना है कि यहाँ घूमो कैंपस में, कोई भोली भाली माता है उसको कुछ प्रश्न पूछो। क्वेश्चन नंबर 1, तुम यहां क्यों आई, कब से आई, तुम्हारा अनुभव क्या है, इस ज्ञान का तुम्हें ऐसी कौन सी बात है जो पसंद आई, तुम्हारी दिनचर्या क्या है, तुम ये जो कुछ कर रही हो क्यों कर रही हो, अपना घर संसार सब कुछ छोड़ के यहां 2 मास 3 मास क्यों आ जाती हो। और वो माता या वो भाई जो उत्तर देगा वो कहीं पड़ा हुआ नहीं होगा, वो कहीं से बोरोड या स्टोलन नहीं होगा, और उसका जो उत्तर होगा, टेक इट एज द ग्रेटेस्ट स्पीच ऑफ दिस एमबीएम कॉन्फ्रेंस, द ग्रेटेस्ट स्पीच, क्योंकि वो जो बोलेगा वो अपने अनुभव से बोलेगा और अनुभव से बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं है। तो आज और कल दोपहर तक यदि यहां है या जब तक यहां है, कहीं पर भी घूमते हुए बस ये काम करना है। इसी मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स में एक बार एक कॉन्फ्रेंस थी और यहां पर एक बहुत बड़े पुलिस कमिश्नर आए थे और यहां से शांतिवन जाना था, लास्ट डे था, जो बस थी ट्रांसपोर्ट चली गई, वो ढूंढ रहे थे, उनके 2 बैग्स थे। तो हमारा एक शांतिवन का भाई साइकिल पर आया, अब उनको पता नहीं है, उसको पता नहीं है पुलिस कमिश्नर है, वो बेचारा भोला भाला भाई, और उसने कहा आपको कहाँ जाना है, उन्होंने कहा मुझे उधर जाना है, वो कहा बैठो साइकिल पर, अपने साइकिल के सामने वाले डंडे पर बिठाया और एक बैग पीछे लटकाई और उनसे कहा एक बैग आप पकड़ो, और साइकिल से बिठाकर उनको वो लेके गया। वो कमिश्नर साहब आश्चर्य हो गए, उनसे सब थरथर कांपते हैं उधर डिपार्टमेंट में, और वो कहने लगे कि ये भाई इतना भोला, और मैंने उसको चलते चलते पूछा तुम यहां कैसे आए, और उसने जो उत्तर दिया मैं यहां की पूरी कॉन्फ्रेंस भूल गया, जो कॉन्फ्रेंस में सुना, जो बड़े बड़े लेक्चर सुने, कुछ याद नहीं रहा मुझे, बस उसने जो सुनाया और उससे जो बातें मैंने की, दे वर हार्ट टचिंग। वो यहां से गए और वहां जो सेवा केंद्र है जहां वो रहते थे वहां पहुंचे और इस ज्ञान को गहराई से समझा और फिर अपना ये अनुभव सुनाया। तो ये काम सबको करना है, चुपचाप यहां वहां घूमो और पूछो आत्माओं से कैसे, क्यों, किस लिए, क्या है यहां पर, किसने आकर्षित किया। और यहां एक और चीज देखोगे, जितने सारे लोग हैं अधिकतर युवा है, यंग। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था मुझे ऐसे लोग चाहिए जो सामने खड़े हो जाए और कहे मेरा परमात्मा के सिवा इस संसार में कोई नहीं है और हमारा जीवन केवल विश्व के लिए समर्पित है, कल्याण के लिए, एंड 100 सच एंड द वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्म्ड। उन्होंने कहा था 100, यहां 100 नहीं है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स सच एंड द वर्ल्ड वुड बी ट्रांसफॉर्म्ड। ये कौन लोग है, किसी कुमार से मिलो और पूछो तुम यहां क्यों आए, कोई झाड़ू लगा रहा है उससे पूछो तुमने पढ़ाई क्या की है, उसकी डिग्रियां सुनकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। क्या है इस भूमि में, क्या है इस मधुबन में, क्या उन्होंने पाया, क्या उन्होंने सीखा, वो कौन सी शिक्षाएं उन्हें दी जाती है। और सबसे बड़ा उदाहरण हम खुद ही है आपके सामने बैठे हुए। अगर हमें इस इंस्टीट्यूशन का कोई सबसे बड़ा हेड भी आकर कहता था कि यहां आ जाओ, तो शायद हम नहीं आते। अनुभव, हमारा 12th स्टैंडर्ड पूरा हुआ और जैसे ही पूरा हुआ एक टर्निंग पॉइंट आ गया जीवन में, और वो इतना भयंकर टर्निंग पॉइंट था कि हमें भी आश्चर्य हुआ ये हो क्या गया। अभी तक जैसे सब बच्चे होते हैं खेलकूद करते हैं वैसे हम भी थे, और हमारे पिताजी चाहते थे कि हम डॉक्टर बने, और महाराष्ट्र में सेवाग्राम है वहाँ पर मेडिकल कॉलेज है और उनकी ऑटोनॉमस बॉडी कॉलेज है, उनकी अपनी एंट्रेंस एग्जाम होती है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलावा, वहाँ एक चौथा सब्जेक्ट होता है गांधीयन थॉट्स, वो स्टडी करना पड़ता है, और ट्वेल्थ की छुट्टियाँ लग गई। और हमारे पिताजी चाहते थे कि हम डॉक्टर बने, वो किताबें लेकर आए और हम पढ़ना चालू किए, फर्स्ट डे सेकेंड डे थर्ड डे फोर्थ डे फिफ्थ डे, और पढ़ते पढ़ते ये लगा कि लेखक जो अपने विषय में कह रहा है ये तो हमारे ही जीवन में हो रहा है। लेखक लिखता है मैंने बीड़ी पी और फिर पश्चाताप किया, लेखक ने लिखा कि मैंने झूठ बोला, हमने ऐसा कुछ किया नहीं था, पर हमें लगा हमें भी पश्चाताप करना चाहिए। और वो किताब पढ़ते 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 ही हम मौन चले गए, एकदम एब्सोल्यूट मौन, और उसी मौन में एक नया जन्म हुआ। एक दूसरी किताब फटी पुरानी हमारे घर में पड़ी हुई थी, लव ऑफ गॉड बाय सेंट फ्रांसिस ऑफ डी सेल्स की, बस ये पढ़ते 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 कुछ हुआ, जो जीवन संसार की ओर जा रहा था वो प्रभु की ओर टर्न हो गया, और वो मौन एक दिन नहीं या दो दिन नहीं, 6 months अचानक 12th का रिजल्ट आया, बहुत अच्छे मार्क्स, पीसीबी 97%, पीसीबी पीसीएम 97, कहीं पर भी एडमिशन मेडिकल या इंजीनियर, एक जगह मेडिकल में एडमिशन हो गई, वो 4 साल भगवान की खोज में थे, एक तरफ मेडिकल की पढ़ाई थी और दूसरी तरफ भगवान की खोज, यहाँ तक कि जो मेडिकल का हमारा हॉस्टल था उसके पीछे एक मंदिर था, बहुत सी पढ़ाई भी हमने उसी मेरे उस मंदिर में बैठ कर की। ऐसा एक दिन नहीं था कि कहीं घूमने नहीं गए, हजारों राम कथाएं, एक तरफ मेडिकल की फिजिक्स एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री, और दूसरी तरफ परमात्मा खोज, MBBS पूरा हुआ, फिर से सेकंड टर्निंग पॉइंट, वहाँ एक रामकथा हुई और हमने वो सुनी और 7 दिन फिर मौन में चले गए। फिर इंटर्नशिप चालू हुई, उस इंटर्नशिप में ऐसा पैशन कि जो पेशेंट है, मराठी में कहावत है जे जे भेटी जे भूत तेते मानी जे भगवंत, वही भगवान है। सब लोग पीजी के एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी करते थे, पर हम केवल पेशेंट पेशेंट पेशेंट। पूरा 1 साल उसमें गया, फिर से इंटर्नशिप पूरी हुई, सबने कहा रिजल्ट आ गया, आई वॉज टॉपर, फाइनल MBBS में ओवरऑल। परंतु फिर तीसरा मौन, फिर से खोज, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। और वहाँ एक मठ था, रामकृष्ण मठ, हम वहाँ जाने लगे और जितनी किताबें थी वहाँ पर सब के सब पढ़ डाली, और वो किताब पढ़ते पढ़ते ही एक दृश्य हमें दिखा, और वो दृश्य ये था कि हम बोल रहे हैं और हजारों हजारों लाखों लाखों लोग सुन रहे हैं, और हमें लगा ये वेदांत का संदेश है जो हमें संसार को देना है, अहम ब्रह्मस्मि प्रज्ञानम ब्रह्म, ये वाला संदेश। और वो पढ़ते पढ़ते ही ऐसा एक दिन नहीं, कोई सत्संग चर्च, 3 मास केवल चर्च में गए, सब छोड़ दिया हिंदू धर्म का, जो जो दिखाई दिया, जो जो लिटरेचर अवेलेबल था, हिंदुइज्म सिखिज्म बौद्धिज्म सब। हम गए थे अपने भाई के पास कुछ किताब मेडिकल की एंट्रेंस, पीजी की एंट्रेंस की पढ़ाई करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन। सब ने कहा तुम होशियार हो पीजी करो, पर पीजी और ये सब में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि प्यास लगी थी अंदर किसी को पाने की। और फिर अचानक एक दिन हम उस सत्संग में बैठे थे, कितने सत्संग किए पता नहीं, और बार बार अशरीरीपन, बार बार जैसे खो जाते थे। और फिर दो विजन दिखने लगे, एक तरफ मेडिकल, एक तरफ क्या करूं, इसमें रहूं कि इसको छोड़ूं। और फिर एक सबसे लंबा मौन था, और उस मौन में हमने ये डिसाइड किया था कि मुझे ये छोड़ देना है। रियलाइजेशन ऑफ गॉड, एक सत्संग में हमने सुना कि द गोल ऑफ लाइफ इज गॉड रियलाइजेशन, एंड द ओनली गोल ऑफ लाइफ इज गॉड रियलाइजेशन, नथिंग एल्स। सारे उपनिषद, सारी फिलॉसॉफी, नॉट जस्ट इंडियन बट वेस्टर्न फिलॉसॉफी, अरविंदो, श्री श्री अम्मा माता मातेश्वरी अम्मा, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, योगा द सत्संग सोसाइटी, रमन महर्षि, इमैनुअल कैंट, शोफेनर, ईस्टर्न वेस्टर्न सारा, सेंट फ्रांसिस डी सेल, सेंट एसीसी, सेंट बर्नार्ड, सेंट क्लेरवो सब, और फिर भारत के संत। और एक ऐसी अवस्था आई थी जीवन में कि यदि अभी एट दिस मोमेंट मुझे भगवान नहीं मिला तो आई विल डाई। और हमारी लौकिक बहन अभी वर्तमान में बैठी है इसी सभा में, तो वो इस संस्था से जुड़ी थी, और उसने हमें कहा भी था कि यहाँ जाओ, परंतु हमारी बिल्कुल, हम गए भी थे सेवा केंद्र पर, स्टडी भी किया था थोड़ा सा, परंतु जैसे संसार में कहा जाता है सभी मार्ग भगवान की ओर जाते हैं, एवरीथिंग इज राइट, तो हमारी भी यही मान्यता थी कि ब्रह्मा कुमारी भी एक ही मार्ग है, परंतु एक मात्र मार्ग है ये नहीं, ये भी मार्ग है। अगर यही सत्य है तो फिर अब तक जो ब्रह्मा, अब तक जो हमने संसार में पढ़ा, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, तुलसीदास, एकनाथ, मीरा, तुलसीदास, ये सारा लिटरेचर का क्या फिर, ये तो एब्सोल्युटली न्यू फिलॉसफी है जिसके कभी सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं कि परमात्मा किसी के तन में प्रवेश कर रहा है। दिस इज एंटायरली न्यू फिलॉसफी, इट्स नॉट रिटन एनीवेयर, हाउ डू आई बिलीव। फिर भी हमने फिर घर पे बताया, 50 संस्था की हमने लिस्ट बनाई थी कि जहां हमें जाना है छोड़कर संसार, हमारे मेडिकल के सर्टिफिकेट्स हमने छोड़ो इसको चला देंगे ताकि वापस आने का कोई मार्ग ना बचे। हमारे पिताजी ने सब छिपा दिया, मेडिकल एंट्रेंस जो एग्जाम दी थी उसका रिजल्ट आ गया, एक जगह एमडी मिल गई, वो एमडी की सीट हमने छोड़ दी। क्यों? हमारी उम्र थी तब 23, 22, 21, 22, बट आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग एट द वर्ज, ऐसा लगा जीवन वेस्ट हो गया है, विदाउट गॉड मुझे कुछ नहीं चाहिए। एंड आई डिसाइडेड टू रिनाउंस द वर्ल्ड। इतनी संस्थाओं में से सबसे लास्ट नाम डाला ब्रह्मा कुमारीज का, क्योंकि हम देखते थे वहां केवल बहने हैं, हमें वहां नहीं जाना है जो बहने। एक बार गए भी थे, चुपचाप पीछे जाकर बैठे, और बहन जी वहां मुरली सुना रही थी, और मुरली में वाक्य है भक्ति है रात ज्ञान है दिन, हम उठ के पीछे से चले गए, भक्ति को रात कह रहे हैं। फिर आए घर पे, बताया भाई को, बताया कि मैं छोड़ रहा हूं, आई एम टेकिंग संन्यास इन रामकृष्ण मठ। वो डर गया एकदम, उसने कहा घर पे बताओ, हमने कहा घर पे नहीं बताएंगे, संसार से चुपचाप निकल जाना पड़ता है। उसने बहुत कहा बता के जाओ, हम घर गए और घर पे एकदम भयंकर हंगामा हो गया, डेढ़ मास घर पे ही बंद हो गए, कितने लोग समझाने आए, तुझा आए तुझ पाशी, कहाँ जा रहा है, यही सब कुछ है, सब कुछ, इतनी कुंडलियां निकाली गई और सत्यनारायण की पूजा हुई रोकने के लिए। हमारी माता जी भक्त थी, गणेश भक्त, तो गणपति को पानी में डुबो दिया। इतना बड़ा संकट, जब तक संकट नहीं दूर होता पानी के अंदर, ये क्या हो गया? परंतु वो वैराग ऐसा था, वैराग इतना भयंकर वैराग, कुछ नहीं चाहिए यहां का, हाँ मैं जा रहा हूं, तुम्हारे कपड़े भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हमें समझाने के लिए लगभग 150 लोग आए होंगे। हमारे पिताजी ने बहुत लंबा लेटर भी लिखा था टू अटल बिहारी वाजपेयी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, माय सन हैज बीन हिप्नोटाइज्ड बाय रामकृष्ण मठ एंड मिशन, प्लीज हेल्प द हेल्पलेस फादर। 6 पेज का लेटर था। पर हम ऐसी अवस्था में थे कि आई एम नॉट रेडी टू लिसन टू एनीबडी। नको देवराय अंताता पाहु प्राणः सर्वथा जाहु। आग थी आग भगवान को पाने की। और फिर हमने फाइनल कर लिया, पिताजी को लेके गए, मुंबई लेके गए, पुणे लेके गए। उन्होंने एक नया मैटर निकाला कि इसके नाम पर बैंक का लोन है, एमबीबीएस के लिए निकाला हुआ, वो पहले पैसे दो फिर लो जो करना है। उसके लिए फिर हमने जॉब किया एक जगह महाराष्ट्र में वर्धा के पास आरवी, 6 मंथ्स में जो जो पैसे मिलते गए बैंक में डालते गए, आई एम अगेन रेडी। हमारे पिताजी फिर वो बड़े ऑफिस में गए, उसको कहा, उनको कहा कि डोंट एक्सेप्ट हिज रेजिग्नेशन, ही इज चीटिंग मेडिकल प्रोफेशन। रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं हुआ, फिर आए, परंतु हमने तो फाइनल कर लिया। किसी ने कहा, हमने कहा कहाँ जाए, किसी ने कहा बेलूर जाओ, पर किसी ने कहा बेलूर नहीं, तुम साउथ में जाओ, वहां एक गांव है, वहां पर जाकर यू ज्वाइन। हम चुपचाप निकल गए। हमारी माता जी ने कहा अगर तू गया वो सामने कुआ दिख रहा है ना, उसमें कूद जाऊंगी। हमने कहा अभी जाओ, गो कूद जाओ। हमको पता था नहीं कूदेगी मोह। और फिर हम वेल्लोर पहुंचे, कॉमन बुगी में बैठ कर गए, वहां वेल्लोर से एक जगह नेट्रमपल्ली, वहां 4 दिन थे। वहां किसी ने कहा तुम यहां नहीं, तुम बेलूर, तुम चेन्नई जाओ, चेन्नई गाओ। चेन्नई में हमारे पिताजी का फोन आया, वो जो गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया है 6 मास में, 2 मास का, 2 साल करना है ना, तो बॉन्ड है गवर्नमेंट का 2 लाख का, पहले वो फरो फिर डू वॉट एवर। सब कुछ किया और फिर हम वापस आए। रोना धोना घर पर चालू था, मेहमान इतने सारे आते और वो समझाते थे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कोई अपनी डॉटर को लेके आया, वो MBBS कर रही है, तुम दोनों मिलकर जो करना है करो, भक्ति करो, पूजा करो। पर हम किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। और फिर हमको कहा गया, हमने फाइनल कर लिया, हमको तो जाना है चेन्नई, पर हमको कहा गया तुम जाते जाते माउंट आबू होते होते जाओ। और हम यहाँ पहुंचे 26 नवंबर 2003। विशाल डायमंड हॉल है, सबने देखा होगा, देखा है ना। वहां आए, बाबा मिलन का प्रोग्राम था, हमें पता नहीं था कौन आने वाला है, कैसे आने वाला है, हम तो बस ऐसे ही आ गए। कॉमन बुगी में हम बैठे, वो पार्टियां तो उधर थी रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में, पार्टी की बहन को पता था एक डॉक्टर पीछे बैठा है। और हम निकल पड़े और गेट नंबर 2, अभी जो गेट नंबर 6 है शांतिवन का, जैसे ही एंट्री किया इस भूमि में, वंस अपॉन अ टाइम, हमको लगा इस स्थान को मैंने देखा है। परंतु इतना जल्दी हिप्नोटाइज नहीं होंगे हम, एकदम फर्म थे। हमने अपना सामान उसी आश्रम में छोड़ के आए, रामकृष्ण मठ चेन्नई अभी भी है, कोई जाए तो लेके आना, उनको कह के आए हम आ रहे। वापस आए, यहां आते ही हमारा प्लान था माउंट आबू और माउंट आबू से सीधा चेन्नई। यहां पहुंचे, अंदर एंट्री की और ऐसा लगा ये स्थान हमने देखा है, कब पता नहीं। कमरा मिला, 5 लोग थे। रात में स्वप्न एक आया जिसमें एक लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखा। सुबह उठे, हनुमान चालीसा और राम रक्षा सब भूलने लगा, ये क्या हो रहा है, ये कौन है। और फिर 30 नवंबर 2003 डायमंड हॉल, और हम वहां बैठे 3 और 4 बजे के आसपास बैठे होंगे, रात को 11 बजे तक। हमने अपने पिताजी से कहा था कि यदि भगवान मुझे नहीं मिला तो मैं मार दूंगा अपने आप को। और उनसे हमने ये भी कहा था कि मुझे रोकना मत, यदि भगवान स्वयं आकर रोके तो ही मैं रुकूंगा। और उस हॉल में हम बैठे थे और किसी को नहीं जानते, अकेले, और वहां जो कुछ हुआ हमें पता नहीं, पर वो जो स्टेज है उस पर हमने देखा एक ज्योति का अवतरण हुआ। और उस ज्योति ने हमसे कहा कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो मैं हूं। आई एम दैट, मैं आतद्मिदं सर्वं जगत व्यक्ति मूर्ति नाम मत्स्थानी सर्वभूतानि। आई एम द एंड ऑल एंड बी ऑल ऑफ दिस वर्ल्ड। जितनों को हमने पढ़ा था वो सब हमें वहां उस स्टेज पर दिखाई देने लगे। तुलसीदास, मीरा, संत ज्ञानेश्वर, वो सब, वो पूरा हुआ। किसी ने हमको उठाया और कहा उठो, 11 बज रहे, बाबा चले गए, हमें पता ही नहीं, केवल अश्रुधारा है। दूसरे दिन हमसे कहा गया साइट सीइंग के लिए चलो, और ऊपर लेके गए और घुमाने लगे, और साइट सीइंग करते करते हॉस्पिटल के सामने पहुंचे, ग्लोबल हॉस्पिटल, और हमसे कहा गया कि हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल देखने के बाद हमको याद आया कि मैं डॉक्टर हूं। प्रताप सर बैठे थे, अभी अभी थे यहां, हम सीधा उनके केबिन में गए और उनसे कहा हमको अभी के अभी ज्वाइन करना है। उन्होंने कहा तुम कौन हो, तुम कहां से आए? हमने कहा यहां से आए, कौन सा सेंटर, हमारा कोई सेंटर ही नहीं है, हमें तो ये नहीं पता यहां है क्या, कौन है ये लोग। परंतु जिसने मुझे रोका, इट इज इम्पॉसिबल दैट दैट कैन बी अ ह्यूमन बीइंग, इट वॉज नॉट पॉसिबल कि मैं रुक जाऊं। और फिर हम घर गए और घर पे कहा संन्यास कैंसल, गणपति पानी से बाहर। पर हमने कहा हम ग्लोबल हॉस्पिटल जा रहे हैं, हमारी माता जिनका दादा चलता है वो नहीं देख सकती तुमको, ये ठीक है। और फिर हम यहां आ गए, यहां थे 1.5 साल, और फिर यहां से फिर एंट्रेंस एग्जाम दी, फिर पीजी के लिए गए, मीरज में थे, मुंबई में थे, और 10-10-10 को वापस आ गए। ये तो एक आत्मा की कहानी है, ऐसी असंख्य आत्माओं की कहानी है। जहां पर आप अभी बैठे हैं वहां पर आत्माओं का जन्म हुआ है, नया जन्म, पुनर्जन्म। और जन्म देने वाला कोई मनुष्य नहीं है, कोई तीर्थंकर नहीं है, कोई देव पुत्र नहीं है, स्वयं निराकार परमात्मा है, जिस परमात्मा को सारा संसार ढूंढ रहा है। ऐसा कोई उपनिषद नहीं था जो हमने नहीं पढ़ा था, ऐसी कोई फिलॉसॉफी नहीं, थियोसॉफिकल सोसाइटी, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ऑल द रिलीजन्स, इस्लाम, बुद्धिज्म, सिखिज्म, केवल गए नहीं, बैठे नहीं, उसको फॉलो किया। और किसी ने यहां रोक दिया, इसलिए ये हम कह रहे करके नहीं, यहां आपने जिन्हों से सुना उनके लिए नहीं, फाइंड द ट्रुथ योरसेल्फ, अपना सत्य खुद खोजना है। अंतिम 5 मिनट बच गए हैं, इस 5 मिनट में हम आपको 16 पॉइंट्स बताएंगे, टेक होम मैसेज। पॉइंट नंबर 1, ए फॉर आत्मा, यहां से आत्मा का पाठ पूरा करके जाओ। हम वो नहीं नच भाति भूत संगम, तद ब्रह्म निष्कलम हम नच भाति भूत संगम, मैं वो दिव्य चेतनात्मा हूं। और सारा मेडिकल साइंस उसको ढूंढ रहा है, एक किताब है 1935, एलेक्सिस कैरल लिखता है, वी डोंट नो व्हाट वी आर, मैन द अननोन बुक का नाम है, व्हाट वी आर, वी हैव लॉस्ट द सेंस ऑफ वंडर, व्हाट वी आर, द सिविलाइजेशन इटसेल्फ हैज मेड इम्पॉसिबल टू नो वी आर लॉस्ट रियली। ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, जिसे संसार भगवान कहता है, ईश्वर कहता है, गॉड फादर कहता है, वहां यहाँ पर इस यज्ञ में, इस परिवार में उसे बाबा कहा जाता है। बाबा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बाबा अर्थात वो निराकार। सी फॉर साइकिल, ये चक्र घूम रहा है, इस चक्र को जानना है। डी फॉर ड्रामा, ये ड्रामा परफेक्ट है, ये ड्रामा एक्यूरेट है, इस ड्रामा में किसी का कोई दोष नहीं है, ये ड्रामा की टिक टिक होती रहती है, चल रहा है ये ड्रामा। इस ड्रामा को साक्षी होकर देखो तो स्थिति अचल डोल रहेगी। ई फॉर इरा, इरा अर्थात इपॉक अर्थात युग, अभी वर्तमान संगम युग चल रहा है, सामने द एंड ऑफ द वर्ल्ड इज नियर। साइंस के सारे फिलोसॉफीज पढ़ो, स्टडी करो, साइंटिस्ट क्या कहता है, व्हेन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, इज दिस वर्ल्ड गोइंग टू कंटिन्यू अनस्टॉप नॉन स्टॉपेबली, नो। ई एफ फॉर फैमिली, अब आप यहां आए हैं, एक नए नए परिवार से जुड़े हैं, यहाँ प्रभु प्रेम की तरंगे है, एक एक आत्मा में प्रभु प्रेम का अनुभव समाया हुआ है, एक एक आत्मा यहाँ पर रत्न है, हीरा है। जरूरी नहीं है कि वो यहां माइक पर बोलते होंगे, उनको तो बोलना भी नहीं आता है शायद, पर उनका जो अनुभव है दैट इज ग्रेटेस्ट। एफ जी, जी फॉर ज्ञान, यहां से जाने के बाद इस ज्ञान को गहराई से स्टडी करो, क्या है, व्हाट इज दिस। ये छोटे छोटे लोग है, जुत लोग है, युवा लोग, इनको संसार में रहना चाहिए था, इनको तो नौकरी करनी चाहिए थी, यहां क्या कर रहे हैं ये लोग, व्हाट आर दे डूइंग हियर। ई एफ जी एच, एच फॉर हैबिट्स, नई आदतें डालो, जो आदतें यहां के लोगों की है, सुबह सुबह उठ जाते हैं 3:30, कैसे उठते हैं, सारे दिन भर इतनी ऊर्जा इतनी शक्ति कहां से है उनमें। आए इम्बाइब डिवाइन वर्च्यूज, एक एक से बात करो जैसे अमृत की धारा बहती है। बोलती जे अर्णव अमृता से, जे जर्नी, अपनी जर्नी फिर आरंभ करो। के कर्म फिलॉसफी कल आपने पढ़ी, उसको और गहराई से स्टडी। एल लाइफ ऑफ ब्रह्मा, अब तक संसार की सभी आत्माओं की जीवन कहानी पढ़ी, अब ब्रह्मा कौन है, हु इज आदिदेव, बुक है वो लेके जाना जाने से पहले। If you ask me one book to read from this institution, it is only one book, Adidev. Unless and until you know the founder, you will not know what is going on here, Adidev. M, mantra, एक ही मंत्र है, मन मना भाव, एक ही मंत्र है मेरा बाबा। यहां से जाते समय हृदय में छाप लगा कर जाओ कि यहां आकर जिसको पाया है वो मनुष्य नहीं है, भगवान है। सारी कसौटी पर उसको कसो, भगवान किसको कहता है संसार, और यहां क्या है भगवान। एन न्यू बिगिनिंग्स, यहां ना एक नई शुरुआत है, एक हम्बल बिगिनिंग, ये जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाए। हम यहां आए थे और यहीं रुक गए, यहां से कहीं और जाने वाले थे पर किसी ने पकड़ लिया, रोक लिया, रुक गए। एम एन ओ ऑब्जर्वेंस ऑफ श्रीमत, और लास्ट प्यूरिटी। अगर एक ही हमसे पूछा जाए कि यहां क्या है वो शक्ति, तो एक ही शक्ति है और वो शक्ति है ब्रह्मचर्य की शक्ति, वो शक्ति है प्यूरिटी की पावर, पवित्रता की शक्ति। वातावरण में ही प्रकंपन है प्यूरिटी के, संसार में कहीं पर भी जाओ, कोई भी चैनल खोलो, कोई भी मैगजीन, कोई भी मीडिया, सब जगह काम विकार एंड नथिंग बट लस्ट, कुछ भी नहीं है। इसके अतिरिक्त सारी मूवीज इसके इर्द गिर्द घूमती है, सारा संसार इसके इर्द गिर्द घूमता है, लस्ट एंड वायलेंस, दैट्स इट। यहां ऐसा क्या है, यहां प्यूरिटी है, अंग अंग में प्यूरिटी समाई है। ये बहनें जो यहां देख रहे हो आप, जो बहनें बातें करती है, कौन है ये बहनें, क्या है इनमें ऐसा, क्यों इनकी वाणी में इतना आकर्षण है। विवेकानंद ने कभी कहा था 1902 में उन्होंने शरीर छोड़ा, ये यज्ञ स्टार्ट हुआ 1936, टेक इट एज अ डिवाइन प्रोफेसी, उन्होंने कहा था डे विल कम, एक समय आएगा जब भारतीय नारी, अ इंडियन लेडी क्लैड इन व्हाइट, शैल स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड द वर्ल्ड ओवर, एंड दैट लेडी इज नन बट ब्रह्मा कुमारी, अ लेडी क्लैड इन व्हाइट, शी इज स्प्रेडिंग द मैसेज। ऐसा पवित्र जीवन, इतना निस्वार्थ जीवन, वो चाहती तो क्या नहीं कर सकती थी संसार में, परंतु अपने जीवन को इस यज्ञ के प्रति अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। तो वंस अपॉन अ टाइम इन मधुबन हजारों चीजें हुई है, अभी लास्ट वंस अपॉन अ टाइम जब यहां से आप जाओगे तब दूसरों को बताना कि वंस अपॉन अ टाइम वी वर इन मधुबन और हमने ये सब अनुभव किया है। यहां हमने केवल कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं गए थे, कुछ और चीज के लिए गए थे। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, आंखें बंद, पिछले दो दिनों में क्या अनुभव किया उस पर एक नजर दौड़ाएंगे। मैं एक शुद्ध चेतना हूं, संसार के अनंत सागर में चैतन्य की वह तरंग मैं हूं। संपूर्ण वायुमंडल में परमात्म प्रेम की तरंगे हैं, मन शांत, अंग अंग में पवित्रता का अनुभव, इसी अनुभव में खो जाएंगे। ओम शांति।
जहाँ पे बहती ज्ञान की धारा वहाँ है ध्यान हमारा, जहाँ पे मीठे बच्चे पुकारे बाबा है हमारा, ओ हो हो,
जहाँ पे बहती ज्ञान की धारा वहाँ है ध्यान हमारा, जहाँ पे मीठे बच्चे पुकारे बाबा है हमारा।
फरिश्तों का जहाँ पे हो गुंजन
वो है प्यारा प्यारा मधुबन, वो है प्यारा प्यारा मधुबन। रखते ही कदम जहाँ पे मिल जाते प्रभु, वहाँ पे शिव का हो जहाँ पे मिलन, वो है प्यारा प्यारा मधुबन, वो है प्यारा।
रखते ही कदम जहाँ पे मिल जाते प्रभु, वहाँ पे शिव का हो जहाँ पे मिलन, वो है प्यारा प्यारा मधुबन, वो है प्यारा प्यारा मधुबन।